संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। समय सार परमागम की चर्चा चल रही है, जिसमें अपन बंधाधिकार तक आए हैं। बंधाधिकार के बारे में एक व्याख्यान हुआ है और जिसमें ये बताया गया कि बंध का मुख्य कारण क्या है। ना तो कारमान वेदनाएं बंध का कारण है, न मन वचन काय की चंचलता बंध का कारण है, पर यहां तक कि चेतन अचेतन की हिंसा भी बंध का कारण नहीं है। जिसको सारी दुनिया में महापाप माना जाता है, जैन दर्शन का तो मूल सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म, यहां कहते हैं चेतन और अचेतन की हिंसा भी बंध का कारण नहीं है। और इससे भी गजब बात कि पांच इंद्रियों के विषय भोग भी बंध के कारण। बंध का कारण यदि एक है, एकमात्र रागादि विकारी भाव है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है और असंयम है। बंधो एक रागादि अशुद्ध उपयोग से इस बात को की चर्चा करने की, और दूसरे ये बात कही कि जो भी कर्म का बंध होता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा मिथ्या मान्यता का होता है और दूसरे नंबर पर शुभाशुभ भावों का होता है। और ये जो क्रिया है जिसे हम जड़ की क्रिया कहते हैं, उससे तो बंध और मोक्ष का कोई संबंध ही नहीं है। क्योंकि परम सत्य बात यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मार और जला ही नहीं सकता है, सुखी दुखी नहीं कर सकता। इस बात को बताने के लिए इस बंध अधिकार में अनेक गाथाएं लिखी, 25-30 गाथाओं के लंबे चौड़े प्रकरण में प्रणाम योग का आधार देकर ये सिद्ध करने की कोशिश की कि निज आयु से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। निज आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। क्योंकि प्रत्येक जीव अपने आयु कर्म के उदय के अनुसार जिंदा रहता है और आयु कर्म के क्षय होने पर मरता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आयु कर्म दे नहीं सकता है तो वो उसे कैसे मार सकता है और कैसे दिला सकता है। इसी प्रकार के सिद्धांत को सुख दुख के संबंध में समझना चाहिए कि जब प्रत्येक जीव अपने असाता कर्म के उदय से दुखी होता है और साता कर्म के उदय से सुखी होता है, और तुम किसी को साता और असाता कर्म दे नहीं सकते हो तो उसके सुख दुख के देने वाले तुम कैसे हो सकते हो। ये महासिद्धांत है। यदि इसे गहराई से हम विचार करें तो हमारे जीवन में सुख और शांति आ सकती है। यदि हम चारों तरफ निगाह डालकर देखें तो यह बात एकदम स्पष्ट दिखाई देती है कि हमारे दुख का कारण क्या है। हमारे हृदय की यह मान्यता कि कोई मुझे मार ना दे, कोई मुझे दुखी ना कर दे, हम निरंतर भयाक्रांत रहते हैं और मैं दूसरों को सुखी दुखी कर सकता हूं, मार सकता हूं, ऐसी श्रद्धा के कारण दूसरों को दबाकर उन्हें अपने कब्जे में रखने के विकल्प में उलझे रहते हैं। इस जगत में जितने भी शस्त्रों का निर्माण हो रहा है सुरक्षा के नाम पर, वो इसी मूल मान्यता के आधार पर है कि मुझे अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना है, मुझे कोई मार ना दे, इसके लिए हमने इतने हथियारों का निर्माण किया है। गजब की बात तो यह है कि हथियार किसी की मृत्यु का कारण तो हो सकते हैं, रक्षा का नहीं, लेकिन हम इनका निर्माण रक्षा के बहाने करते हैं। हिंदुस्तान की भी एक बड़ी विशेषता है कि छोटे काम का अच्छे नाम रखना जितना हिंदुस्तानी जानते हैं उतना कोई नहीं जानता है। मछलियों को मारने का धंधा करते हैं और नाम रखते हैं मत्स्य पालन उद्योग। एक उद्योग है जो मछलियों के पालन करने का काम करता है, काम करते हैं मारने का, खाने का, और नाम रखते हैं पालने का। ऐसे ही चूहे मारने की दवा, नाम रखते हैं दवा, वो बताने के काम आती है, और काम लेते हैं मारने का उसे। मैंने खोटे काम का अच्छा नाम रखना यदि किसी से सीखना है तो हिंदुस्तानियों से सीखे। मेरे कहने का आशय यह है कि हमने अपनी सुरक्षा के नाम पर इतने हथियार बनाए हैं जो हमारे मौत के पैगाम बन गए हैं। उनसे तो लोग मरते हैं, जो मारने के काम आते हैं उन्हें हम बचाने का काम के नाम पर बनाते हैं। कोई हमें ना मार ना दे, पर इसके लिए सारा इंतजाम है। लेकिन भाई साहब, मैं आपसे कहता हूं कि आपको कोई नहीं मारे, आप स्वयं भी तो मर सकते हैं बीमार होकर, क्यों? तो हमने उसका भी इंतजाम किया है। ये सारी दवाइयां एंटीबायोटिक्स, क्या इनका नाम क्या रखा है? जीवन रक्षक दवा। हिंदी में अनुवाद क्या है इसका? जीवन रक्षक दवा। वास्तव में है तो वो कीटाणुनाशक है, तो हत्यारी दवा। और अंग्रेजों ने तो ईमानदारी से उसका नाम रखा ना एंटीबायोटिक्स, माने कीटाणुओं के विरुद्ध। लेकिन हमने उसका अनुवाद कीटाणुनाशक नहीं रखकर जीवन सुरक्षा ऐसा नाम दिया। तो हमने एक दूसरी गोलियां बनाई इसके लिए कि हम अपने आप ना मर जाएं, दूसरे ना मार दें, इसके लिए अणुबम एटम बम बनाए, और अपने आप ना मर जाएं इसके लिए हमने एंटीबायोटिक्स बनाए। और यही मैंने कहा था सुख दुख के संदर्भ में भी समझना, तो ठीक है कोई मार तो नहीं सकता है, बता भी नहीं सकता है, बता सकता होता तो हमारे बाप दादे भी जिंदा होते, सात पीढ़ी के लोग जिंदा होते। आज वे नहीं हैं तो सब पहले वो दवाइयां नहीं थी इसलिए नहीं है, तो अब हम तो रहेंगे ना अपनी सात पीढ़ी तक, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जितने भी हमने बचाने के इंतजाम किए उससे आज तक कोई बचा तो नहीं। तो लोग कहते ना सही, दुख तो नहीं होगा, और इसके लिए हमने दर्दनाशक दवाइयां बनाई, दुख निवारण दवाइयां बनाई। इस तरह हमने सारे प्रयत्न, कोई हमें मार ना दे और हम स्वयं ना मर जाएं, हमें कोई दुखी ना कर दे, इस लक्ष्य से ही ये सारा इंतजाम हमने किया है। इस बंधाधिकार में आचार्य देव कहते हैं कि जब कोई किसी को मार ही नहीं सकता है, बता ही नहीं सकता है, उसे सुखी दुखी कर ही नहीं सकता है, तो फिर एक क्या कारण रह जाता है कि हम ये माने कि हम इससे बच सकते हैं और इससे दुखी सुखी हो सकते हैं। इस बात को समय सार के इस बंधाधिकार में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई किसी को मार बता नहीं सकता है। मारने और बचाने की क्रिया से बंध भी नहीं होता है। इसी समय सार की गाथा है 262 और 265, पेज नंबर 418। 262 में गाथा देखो, अज बसे नदी बंधो स सत्ते मारे ऊ बाव मारे ऊ तो बंद समासो ते जीव मरे चाहे ना मरे, जीवों के मरने और ना मरने से बंध नहीं होता, बंध का कोई संबंध नहीं है। बंध का संबंध तो अद्वसान भावों से है। अद्वसेन दि बंधो देखा ना, एसो बंध समासो। यदि बंध का वर्णन अत्यंत संक्षेप में करना है तो इतना ही पर्याप्त है। तो हमारे अंदर में मारने और बचाने का भाव हुआ तो उससे हमें बंध होगा, मारने और बचाने का भी प्राय हुआ तो उससे हमें बंध होगा। जी मरे और चाहे ना मरे। ऐसे ही देखिए 263वीं गाथा, बस तुम पद उच्च जम पुण अद्वसानम तु हो दिजीवाणम न बत दो बंधो अद्वसाने न बंधोती। यद्यपि यह सत्य है कि वस्तु को लक्ष्य करके अद्वसान भाव होते हैं, लेकिन उससे बड़ा परम सत्य यह है कि बंध अद्वसान भावों से होता है वस्तु से नहीं। ये क्या कहना चाहते हैं? ये दो गाथाएं बंध समास का बंध अधिकार की मेन सेंट्रल आइडिया को बताने वाली गाथाएं हैं। क्या कहते हैं कि यदि अद्वसान भावों से बंध होता है तो तुम अद्वसानों को त्याग करने की बात कहते, तुम वस्तुओं को त्याग करने की बात क्यों कहते हो? फिर तुम ये कहो कि मारने का भाव मत करो। ये क्यों कहते हो? किसी को मारो मत। तुम ये कहो कि किसी को दुखी करने का भाव मत करो। ये क्यों कहते हो? किसी को दुखी मत करो। क्योंकि जब ऐसा कहते हो कि तुम किसी को मारो मत, दुखी मत करो, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम मार सकते हैं। उसमें मारो मत वाली बात तो हमारी समझ में नहीं आती है, लेकिन उसमें से हमको ऐसा लगता है कि हम मार सकते हैं। क्या कोमल सिंह जी, मैं आपके पास जाऊं कि साहब जी हमारा एक कागज है, इस पर आप जरा साइन कर दो। अलग मैं भी कोई बड़ा आदमी हूं और मेरे साइन किए बिना कोई काम रुक सकता है, और मैं साइन कर दूंगा तो इस पर बहुत बड़ा उपकार करूंगा। और जरा अकड़ के बात करने लगता है, एक मिनट में कुछ नहीं है। तो क्या है? क्या कुछ नहीं, यहाँ की सड़क की सफाई ढंग से हो इसलिए म्यूनिसिपैलिटी में एप्लीकेशन दे रहे हैं, ऐसे भीड़ के साइन कराने हैं। आप करोगे तो ठीक है और नहीं करोगे तो बहुत भीड़ कर देगी, और कोई नहीं करेगा तो हम अपने ऑफिस में बैठ गई एक दाएं हाथ से एक बाएं हाथ से कर लेंगे। ऐसी बात है लाभ कि नहीं साहब आप नहीं करोगे तो हो सकता है कि मेरे को फांसी लग जाए। अरे इतनी बड़ी बात है, मेरे सहन नहीं करने पर फांसी लग सकती है, वो करने पर बच सकते हो, फिर देखो भगवान बन जाएंगे। बोलो तो तुम क्या करोगे? मैं नहीं करता, आगे मेरी भी जिम्मेवारी है, मैं भी नृत्यक आदमी हूं, मुझे समझना पड़ेगा। तो सारी जिंदगी गुलाम बनाने की कीमत पर वो सहन करेगा। इतना पता लग जाना चाहिए कि मेरे साइन के बिना इसका कुछ काम अटक जाने वाला है। बस क्यों तो इतनी सी जो उसने कही ना कि तुम किसी को मारो मत, तो उसमें से वो नहीं मारने का संदेश तो नहीं लिया। अच्छा मैं मार भी सकता हूं, क्यों नहीं मारू? भ्रम करोगे तो मैं मारूंगा, इसलिए तो होता जाता है कि भैया कोई द्रव्य किसी को मारे ही नहीं सकता है, तो तुमने ऐसा क्यों कहा? जरूरत क्या थी कि मारो मत? क्यों? कि ये तो जिनवाणी में जो ऐसा लिखा है कि तुम मारो मत, उसका आशय तो ये है कि तुम मारने का भाव मत करो, उससे तुम्हें कर्म बंद होगा, तुम नरक में जाओगे। तो हम ये तुमसे कह रहे हैं कि मत मारो, इसलिए नहीं कह रहे कि तुम उसे मार सकते हो, और उस पर दया करो। ये तो तुम अपने पे दया करो, इसके लिए कह रहे कि तुम्हें नरक में नहीं जाना हो तो तुम मारने का भाव मत करो, क्योंकि मार तो सकते ही नहीं। लेकिन बड़े दुख की बात तो यह है कि जिन वाणी में ऐसा व्यवहार वचन आता है कि तुम मारो मत, और ये समझ लेता है कि मुझे मारने का अधिकार है, तुम बचाओ तो वो समझता है कि मैं बचा सकता हूं, तुम सुखी करो तो वो समझता है मैं सुखी कर सकता हूं, दुखी करो तो मैं दुखी कर सकता हूं। ये कर सकने वाला उपदेश नहीं है। जब मार सकते हो या बचा सकते तब बात करेंगे, तो तुम मार ही नहीं सकते हो, ये बात है। और ये चरणानुयोग की भाषा का उपदेश है। तो इसका क्या अर्थ है कि तुम मारने का अभिप्राय मत रखो, मारने का भाव मत करो, नहीं तो तुम्हें बहुत भयंकर कर्मबंध होगा। अपने यहां तो उदाहरण है ना, ये तंदुल मत्स्य का। तंदुल मत्स्य तो जानते हैं ना कि एक बहुत बड़ी मछली होती है शंभु रमन समुद्र में, हजारों वजन की होती है, 10,000 वजन की, हजारों वजन की होती है मछली। उसकी आंख में एक मछली और होती है छोटी सी। तंदुल माने जैसे कान में आंख में जा रही, तो तंदुल मत्स्य है ना, तंदुल माने चावल जैसे में छोटी सी। अब जब वो बड़ा मत्स्य ऐसा मुंह खोल देता है तो सैकड़ों मछलियां उसके मुंह में आती हैं और जाती हैं बाहर, आती हैं जाती हैं। तो वो कान में बैठा हुआ मत्स्य ये सोचता है कि कैसा मूर्ख है, इतनी मछलियां इसके मुख में आ गईं, ये मुख दबा लेता तो सब पेट में चली जाती और ये बाहर निकल नहीं है। यदि मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता, क्योंकि वो तो उसके अंदर है, वो एक भी मछली को नहीं खा सकता है। लेकिन इस परिणाम के कारण वो मर के साथ में नरक में जाता है, एक भी मछली नहीं खाई। ऐसे गया वो मछलियों के मरने से, मछलियों के मरने के भाव से, और मार सकता हूं इस अभिप्राय से। तो फिर मारो मत ऐसा कह ही क्यों जाता है? तो कहते हैं ये गाथा है 265वीं, बस तुम पदुच्च जमपुण अद्यवसानम तु होती जीवाणम। कि जीवों को जो अद्यवसान भाव होते हैं वो वस्तु के लक्ष्य से होते हैं। क्या मतलब? किसी को गुस्सा आता है तो हवा में नहीं आता है। कोई ऐसा कहे कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तो किस पर? कि किसी पर नहीं, वैसे ही आ रहा है, ऐसा नहीं, किसी पर आ रहा होगा। कोई व्यक्ति उस वक्त ज्ञान का गेय होगा, उसके लक्ष्य से गुस्सा आ रहा है। कहां मेरे को गुस्सा आ रहा है कि फलाने आदमी के पर आ रहा है, तो मुझे किस बात पर? तो बात कुछ नहीं, बस वैसे ही आ रहा है। कभी लोग हंसते हैं कि ऐसा नहीं होता, उसने मेरे को गाली बकी, उसने ऐसा खोटा काम किया, उद्दंडता की, तो गुस्सा आता है। तो जब क्रोध आएगा तो किसी ना किसी वस्तु के आधार से आता है। इसका नाम है वस्तुम पदुच्च अद्यवसानम होती जीवाणम। अद्यवसान जीव को वस्तु के आधार से होते हैं, समझे ना। लोभ होता है कि किसका? कि कुछ का नहीं, बस वैसे ही लोभ आ रहा, ऐसा नहीं होता। पैसे का, स्त्री का, पुत्र का, मकान का, जायदाद का, यश का, काय का लोभ है। लोभ किसी ना किसी का होता है, वैसे लोभ नहीं होता है। ऐसे ही मारने का भाव, तो किसी ना किसी को मारने का भाव होता है। तो मारने का भाव आ रहा है कि किसको? नहीं, बस वैसे ही आ रहा है, ऐसा नहीं। तो कहते हैं कि अद्यवसान भाव वस्तु को लक्ष्य करके होते हैं, उनसे बंद नहीं होता है जिस वस्तु के लक्ष्य करके हुए, बल्कि वो अद्यवसान भाव से बंद होता है। और उसे छुड़ाने के लिए, इसलिए उस वस्तु को, अपन को रुपये पैसे को छोड़ो ऐसा कहा जाता है, रुपये पैसे का लोभ छोड़ो ऐसा नहीं कहा जाता। लेकिन होता उसका अर्थ यही है कि रुपये पैसे का लोभ छोड़ो, माफ कर दो उसे। उसका अर्थ है तुम अपने को माफ कर दे, उसे माफ कर दो माने उसके लक्ष्य से तेरे को जो गुस्सा आ रहा है तो तू उसे माफ कर दे, माने गुस्सा मत कर, क्योंकि माफ नहीं करे तो भी तू उसका कुछ नहीं कर सकता, और माफ कर दे तो भी तू उसका कुछ नहीं कर सकता। अहर निसम बरसती बारी बाहा तथापि पत्रह तृतय पलासा। दिन्ना रात बरसात हो तो भी ढाक के पत्ते तो तीन ही होंगे, पांच पत्ते होने वाले नहीं है एक डाली में, एक टहनी में, है ना। ऐसे ही तुम कितनी ही सेवा करो, कुछ तो ही राजा यदि सेव के ब्या भाग्यात परम नैव दधाति किंचित, अहर निसम बरसती बारी बाहा तथापि पत्रा तृतीया पलासा। यदि दिन्ना रात भी तुम सेवा करो और राजा तुमसे संतुष्ट हो जाए तो भी जो तुम्हें वो देगा वो भाग्य से अधिक कुछ नहीं दे सकता, ऐसा लिखा है। तुम्हारे भाग्य में जितना होगा उतना ही देगा। आप भी हो ना, चपरासी से खुश होते हो तो 500 का इनाम दे दो, क्लर्क से खुश होते हो तो 5000 का नाम दे दो, साहब से खुश होते हो तो 1,00,000 रुपया दे दो। क्यों? खुश तो तुम तीनों से एक से ही हुए ना, लेकिन जैसी उसकी हैसियत होती है उसके हिसाब से तुम्हें देने का भाव आता है। मैंने जैसे उसके पुण्य का उदय है उसके अनुसार उसे देने का भाव आता है कि नहीं आता। इसका मतलब है तुमने कुछ नहीं दिया, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन करुणा योग की भाषा ऐसी होती है, मारो मत, किसी को सताओ मत, दुखी मत करो, ख्याल में है ना, ऐसी भाषा होती है, परोपकार करो। लेकिन उसका अर्थ ये होता है कि उसके लक्ष्य से तुम कोई खोटे भाव मत करो, उससे तुम्हें कर्म बंद होगा। तो ये उपदेश की भाषा तो जनवाणी में इसलिए आती है, और हम में से वो अर्थ तो नहीं निकालते हैं। कौन सा? मुझे इसके लक्षण से ये क्रोध नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए, इसका भला नहीं करना चाहिए, भला मैं कर सकता हूं, ऐसी अपनी सत्ता का ज्ञान होता लगता है उसे कि कुछ मेरे हाथ में भी है। मुझे तो पता ही नहीं था कल तक कि मेरे हाथ में भी कुछ है। हम उनसे कहते हैं कि साहब आपको जरूर पधारना पड़ेगा, आपके पधारने से हमारे शिविर की शोभा होगी। तो एक मिनट में उनके तेवर बदल जाता है। अच्छा, मेरे शोभा होगी तो मुझे क्या बनना है? अध्यक्ष के मुख्य अतिथि। क्यों? एक सेकंड में लगता है मेरे से इसकी, यदि मेरे से इसकी शोभा हो रही तो उसका कुछ हिस्सा मेरे को भी मिलना चाहिए। उस वक्त उसे वसूली करने का भाव शुरू हो जाता है। क्यों? कि साहब आप पधारो, आपका व्याख्यान सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं, और आप नहीं आएंगे तो हमारा सारा सुबह बिगड़ जाएगा, फिर देखो तो भगवान बन जाते हैं। अभी मेरे को फुर्सत नहीं है। एक मिनट में बाबूजी, अरे ये तो औपचारिकता है, आप नहीं आएंगे तो भी एक आदमी कम होने वाला नहीं है, और जो आए हैं उनने ये पूछा भी नहीं है कि कौन कौन विद्वान आ रहा है, किन किन का व्याख्यान होगा। यहां आने के बाद किसी ने ये पूछा भी नहीं है, एक बच्चे ने भी, कि वो फलाने क्यों नहीं आए, कि आएंगे कि कब आएंगे कि नहीं आएंगे, ख्याल में है ना। लेकिन फिर भी क्योंकि अनादि का जो अज्ञान है ना, उसका नशा बहुत तेजी से इसको चढ़ता है। ये अधिकार की ये गाथाएं उस नशा को उतारने वाली गाथाएं हैं। कि ये तो कथन सिर्फ इसलिए है कि वस्तुम पदुच्च, वस्तु को आधार करके विकारी भाव होता है, मिथ्या मान्यता भी होती तो वस्तु को आधार करके होती है। मैं दूसरों को सुखी दुखी कर सकता हूं, मार जला सकता हूं, तो दूसरों के लक्ष्य से हुई ना ये मान्यता, इसलिए वस्तु के त्याग की बात कही जाती है। वास्तव में त्याग तो अद्वसान भावों का करना है। ये अभी अधिक समय सार खत्म होगा ना, तो अंत में 47 शक्तियों का प्रकरण आएगा, तो उसमें एक त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है, जिसका अर्थ है कि भगवान आत्मा किसी को छोड़े या किसी को ग्रहण करे, ऐसी शक्ति से शून्य है। मैंने ये किसी को ग्रहण कर ही नहीं सकता और किसी को छोड़ ही नहीं सकता। जब ग्रहण नहीं किया तो छोड़ेगा क्या? तो मैं 10 लाख छोड़ दिए। क्या छोड़ दिया तूने? जब वो बेईमान है, खा गया मेरे, देते ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश कर ली, धमका लिया, लेकिन देता ही नहीं है, तो मैंने छोड़ दिए। जब देता नहीं है तो तूने क्या छोड़ दिए? पूरी कोशिश कर ली, क्यों ऐसे ही छोड़ना है? तो कहते तू किसी को ग्रहण नहीं कर सकता है और तू किसी को छोड़ नहीं सकता, किसी का कुछ कर ही नहीं सकता, ये वस्तु का स्वरूप है। लेकिन जितने भी खोटे भाव होते हैं वो सब पर वस्तु जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं उनके लक्ष्य से होते हैं। तो जब हम कहते हैं उसे छोड़ दो, तो वास्तव में तो उसके लक्ष्य को छोड़ाना, उसमें कुछ करने की मान्यता को छोड़ाना वो उपदेश है। ये कहते हैं गहराई से जाकर के विचार करें तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता ही नहीं है, कहा ना। और ये बात जिनेन्द्र भगवान ने कही कि दो ही बातें हैं, ये जो अपन वो पढ़ते हैं ना सामायिक पाठ अमित गति आचार्य का, सत्येषु मैत्री गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, पढ़ते हैं ना रोजाना। वो उसमें ही जो छंद है दो मार्मिक इसी संबंधी, स्वयं कृतम कर्म यथात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम, परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। हे भगवान, स्वयं कृतम कर्म शुभाशुभ कर्म जो हमने पहले किए हैं उन्हीं का फल हम प्राप्त करते हैं। उपादान की दृष्टि से उसके कर्ता हम हैं और निमित्त की दृष्टि से हमारा पुराना बांधा हुआ कर्म का उदय है। और परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम, यदि हम ऐसा माने कि सुख और दुख यदि कोई दूसरा हमें देता है तो स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, तो हमारे द्वारा जो स्वयं हमने कर्म किए वो बेकार हो गए। जरा कल्पना करो कि हम सारी जिंदगी पुण्य करें, अच्छे भाव करें और फिर भी कोई हमें दुखी कर दे, तो हमारे अच्छे भाव करने का क्या फायदा हुआ? हम सारी जिंदगी खोटे भाव करें और फिर भी कोई हमें सुखी कर दे, तो खोटे भाव करने से हमें क्या नुकसान हुआ? फिर आदमी खोटे भाव करने से क्यों डरेगा और अच्छे भाव करने की कोशिश क्यों करेगा? फिर हम तुम्हारी सेवा करें क्योंकि तुम जैसा करोगे होगा तो वैसा, हमारे अच्छे बुरे कर्म करने से क्या होता है? अन्याय है ना? हमने जब अच्छे कर्म किए हैं तो हमारे अच्छा फल मिलना ही चाहिए। ऐसा समझ लो ना कि मैंने अच्छी तरह पढ़ाई की है और परीक्षा की कॉपी में सारे प्रश्नों के सही उत्तर लिखे हैं और फिर भी हमें मास्टर जी फेल कर दें, क्यों? मास्टर जी को यह अधिकार है कि वो हमें फेल कर सके, तो पढ़ाई पढ़ने से क्या फायदा? तो मास्टर जी की सेवा करो, यही सबसे बढ़िया बात है ना। और यदि हमने कॉपी कोरी रखे आए और कुछ भी पढ़ाई नहीं की और फिर भी मास्टर जी हमें पास कर सकते हैं क्या? और फिर भी कर दें तो भी पढ़ने की क्या जरूरत है? मास्टर जी की सेवा करो। तो आप कह सकते हैं कि नहीं, मास्टर जी की सेवा तो करना ही चाहिए, करना चाहिए, लेकिन पास होने के लिए। क्यों? पास होने के लिए तो पूरी पढ़ाई ही करना चाहिए। किसी मास्टर को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि विद्यार्थी कोरी कॉपी रखे और वो उसे पास कर दे। और किसी मास्टर को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि वो पूरे प्रश्नों का जवाब दे और वो उसे फेल कर दे। उसकी हैसियत तो एक क्लर्क जैसी ही है। नाराज मत होना कि जितने प्रश्नों के उत्तर उसने दिए हैं उनका सही सही जांच करके उतने नंबर उसे दे दे, ये उसकी ड्यूटी है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो बेईमान है, ये उसका कर्तव्य है। उसे कम ज्यादा नंबर देने का अधिकार उसे नहीं है। तो ऐसे जैसे मैंने कर्म किए हैं वैसा फल मिलना मेरा अधिकार है। उसे कोई बदल दे भगवान भी तो मेरे भगवान अधिकार की सीमा का उल्लंघन करता है। ये वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है और अन्याय भी है। कि मैं जिंदगी भर पुण्य करूं और फिर भी मुझे कोई भगवान या कोई भी मुझे दुखी कर दे। अथा तो राजा सैनिक को नरक में जाने से महावीर भगवान ने क्यों रोक लिया, क्यों नहीं रोक लिया? उनका तो वह सबसे प्यारा शिष्य था, श्राव को उत्तम, श्राव को मैं सबसे बड़ा, क्यों? और वे तो तीर्थंकर थे, भगवान थे, अतुल्य बल के धनी थे, अनंत वीर के धनी थे। तो साहब उसने वो नरक गति बांध ली थी, नरकायु बांध ली थी, तो वो अपने कर्म के अनुसार ही गया ना, अपनी पर्यायगत योग्यता के अनुसार ही गया ना, और दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती है। यही वस्तु का स्वरूप सही है। परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम, यदि कोई किसी को दे सकता हो ले सकता है, तो स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, तो स्वयं के किए गए कर्म सब बेकार हो जाएंगे। ये तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो जाए। फिर पापी पाप करने से डरेगा क्यों? एक कवि हुआ है सेनापति नाम का, रीतिकालीन कवि हुआ हिंदी साहित्य में, उसने गंगा की स्तुति लिखी है। स्तुति लिखते हुए व्यंग में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी कि हे गंगा मैया तू पाप प्रचारिणी है, ऐसा लिखा, पाप विनाशिनी नहीं लिखा, पाप प्रचारिणी लिखा बाबूजी। तो किसी ने पूछा कि तुम पाप प्रचारिणी कैसे कहते हो? हमने तो ये सुना है कि गंगा में गोता लगाते ही सारे पापों का नाश हो जाता है, वो तो सारे पापों को धोने वाली है, और तुम कहते पाप का प्रचार करने वाली है। तो जिसके पास ऐसी गंगा मैया है कि चाहे जितने पाप करे तो एक गोता लगाने से सारे पाप धुल जाएं, उसका भगत पाप करने से डरेगा क्यों? दिन भर जम के पाप करे और शाम को एक डुबकी लगाए और सब साफ, तो पाप प्रचारिणी हुई या पाप नाशनी हुई? मेरा सफेद कुर्ता हो उसे जरा भी धब्बा लग जाए तो पहनने के काम का नहीं रहता है, तो मैं संभल के रहता हूं कि धब्बा लगना जाए। लोग कहते हैं ना सफेदी में धब्बा लगाना नहीं, जिंदगी में भी सफेदी है हमारी, सुख उसमें जरा सा धब्बा लग जाए तो हम बदनाम हो जाते हैं ना, तो हम सावधान होकर रहते हैं कि नहीं मेरे को एक ऐसा सा पाउडर मिल जाए क्यों, तो दाग का पता ही नहीं चले कहां चला गया, ढूंढते रह जाओगे। फिर मैं क्यों डरूंगा? फिर तो चाय जैसे धब्बे लगे मेरे सफेद कुर्ते पर, मैं उस पाउडर में डालूंगा और तुम ढूंढते रह जाओगे कि दाग कहां गया। तो यदि जगत में ऐसा कोई इंतजाम है कि पाप कर्मों को बिना भोगे भी धोया जा सकता है, तो फिर कोई पाप करने से डरेगा नहीं। न्याय तो यह है कि जिसने अपराध किया है उसे दंड मिलना ही चाहिए, और जिसने अच्छा काम किया है उसे उसका फल भी मिलना ही चाहिए। न्याय तो ये है। माखनलाल चतुर्वेदी एक कवि हुआ स्वतंत्रता संग्राम का, उसने लगा रे ईश्वर तू क्या कर सकता है इंसाफ, अरे प्रार्थना की रिश्वत पर कर देता है माफ। भगवान तू क्या इंसाफ करेगा, कोई भी कितना ही पाप करके आता है तेरी जरा प्रार्थना कर देता है और तू उसे माफ कर देता है। माफ करने वाले इंसाफ नहीं कर सकते। वो कभी कहता है कि यदि कोई आदमी मुझे पीटे तो मैं उसकी शिकायत भगवान तेरे दरबार में लेके नहीं आऊंगा। कि कहां जाएगा, कि उस थानेदार के पास जाऊंगा, पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाऊंगा जो घूसखोर होगा नंबर एक का। क्यों? क्योंकि तेरे पास आने से क्या फायदा, वो आएगा और जरा माफी मांगेगा, एक नारियल चढ़ाएगा और तू सारे पाप माफी। तो घूस लेना भी ढंग से नहीं आता है। मैं पहली बात ये कहता हूं कि उसने अपराध मेरे विरुद्ध किया है, तुझे माफ करने का अधिकार क्या है? वो माफी मांगे तो मुझसे माफ है, और मैं माफ करूं तो मैं करूं और ना करूं, अपराध मेरे विरुद्ध करता है और माफी तेरे से मांगता है और तू फटाफट माफ कर देता है, क्यों? तो न्याय है। तो पुलिस इंस्पेक्टर के पास जब वो आदमी आएगा तो कम से कम 1000 रुपए की घूस लिए बिना नहीं छोड़ेगा, तो कम से कम मुझे पीटने का उस पर 1000 रुपए जुर्माना तो हुआ, वो सरकारी खजाने में गया कि उसकी जेब में, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जुर्माना तो हुआ, तेरे पास तो वो भी नहीं होता है। मैं न्याय मांगने आया हूं कि मेरे विरुद्ध अपराध हुआ है तो उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। न्याय तो सजा देता है, माफ नहीं करता है ना। इसलिए कहते हैं कि परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम, यदि दूसरे के द्वारा लिया दिया कुछ होने लग जाए तो स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, तो फिर हमारे द्वारा स्वयं के किए गए कर्म बेकार हो जाएंगे। देखो अगला लिखा, निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो न कोपि कस्यापि दधाति किंचन, विचारयन्नैव मनन्यमानसः परो ददाति इति विमुच्यसे मुसीम। अपने द्वारा कमाए गए कर्मों को छोड़कर इन प्राणियों को और कोई कुछ नहीं देता। ऐसा विचार करके समझदार लोगों को परम परो ददाती, कोई दूसरा मुझे दे देगा, ऐसी दीनता की बुद्धि छोड़ देना चाहिए। मैं दूसरे को कुछ दे दूंगा, ऐसे दया का अहंकार भी छोड़ देना चाहिए। परो ददाती विमुच्य से मसीम, ऐसी बुद्धि एक दूसरे को देता है ऐसे छोड़। जरा कल्पना करो कि एक क्लर्क है, उसके दिमाग में एक जम जाए कि काम करने से क्या होता है, तरक्की तो तब होगी जब साहब खुश रहेंगे। ऐसी श्रद्धा वाला क्लर्क काम क्यों करेगा, वो तो साहब के घर के चक्कर लगाएगा। एक विद्यार्थी को ये भरोसा हो जाए कि पढ़ने से क्या होता है, पास तो तभी होंगे जब मास्टर जी खुश होंगे, तो विद्यार्थी पढ़ेगा क्यों, वो मास्टर जी के घर के चक्कर लगाएगा क्यों। एक व्यापारी को यह विश्वास हो जाए कि न्याय से कहीं कोई आज करोड़पति हुआ है, समझे ना, यदि कमाई करना है करोड़पति बनना है तो नीचा ऊंचा तो करना ही पड़ेगा, वो ईमानदारी से काम क्यों करेगा। और एक मुख्यमंत्री को यह भरोसा हो जाए कि जनता की सेवा करने से क्या होता है, गद्दी पर तो तभी तक सुरक्षित हूं जब तक कि प्रधानमंत्री खुश रहेंगे, वो यहां क्या करेगा, वो तो दिल्ली के चक्कर काटेगा, यहां क्यों रहेगा। तो समझ लो कि देश का क्या होगा, वही होगा जो आज हो रहा है। लेकिन विद्यार्थियों को समय सार के हिसाब से श्रद्धा हो जाए कि मास्टर जी के घर के चक्कर काटने से क्या होता है, पास तो तब होऊंगा जब पढ़ूंगा, तो क्या होगा बोलो, पढ़ाई करेगा। एक क्लर्क को भरोसा हो जाए साहब के घर के चक्कर काटने से क्या होता है, तरक्की तो तब होगी जब काम करूंगा, तो वो काम करेगा। एक व्यापारी को विश्वास हो जाए कि किसी को धोखा जिंदगी में एक बार ही दिया जा सकता है, वो भी सबको नहीं दिया जा सकता है, यदि लंबे काल तक सही व्यापार चलाना है और मुनाफा कमाना है तो ईमानदारी से ही विश्वास से ही काम करना होगा, तब वो विश्वास से काम करेगा। और ये मुख्यमंत्री को भरोसा हो जाए कि दिल्ली के चक्कर काटने से क्या होता है, जब तक जनता जनार्दन खुश नहीं रहेगी तब तक मेरी गद्दी सुरक्षित नहीं है, तो वो जनता की सेवा करेगा और देश की काया पलट हो जाएगी। कैसे, इतनी श्रद्धा पलटने से कि दूसरों की गुलामी सेवा करने से कुछ नहीं होगा, मेरा कल्याण तो मेरे स्वयं के पुरुषार्थ से मैं करूंगा तब होगा। बस समय सार यही कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता है, ये मान्यता अज्ञान है और बंध का कारण ये मान्यता ही है। बंधे एक राग आदि अशुद्ध उपयोग से, और कोई दूसरा बंध का कारण इस जीव को है ही नहीं। जगत में जीव मर रहे, सुखी हो रहे, वो दुखी हो रहे, वो उनके पुण्य पाप के उदय से हो रहे, उससे तेरे बंधने का और छूटने का कोई भी संबंध नहीं है। ये बंध अधिकार का सेंट्रल आइडिया है। पूरे बंध अधिकार में अनेक उदाहरण दे देकर, अनेक तर्क दे देकर इसी बात को सिद्ध किया है। देखो वो कहते हैं, देखो इस जीव की क्या पोजीशन है। परमाणु मात्र भी पर पदार्थ जबकि इसका नहीं है, फिर भी न मालूम अपनी इस मान्यता में इसने अनंतानंत पदार्थों पर कब्जा कर रखा है। ऐसी गाथाएं की गाथाएं इसमें, ये धर्म द्रव्य मेरा है, अधर्म द्रव्य मेरा है, काल द्रव्य मेरा है, ऐसा है ना। एक परमाणु इसका नहीं है, एक परमाणु पर इसका कब्जा नहीं है, और इसने लोकालोक पर अपना कब्जा मान रखा है। तो एक कहते थे, दो बात है, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इसकी अनादिकालीन ऐसी मान्यता होने पर भी एक भी परमाणु आज तक इसका हुआ नहीं। ये सबसे बढ़िया बात है सोहनलाल जी। क्यों? कि इसकी मान्यता से यदि कुछ होने लगता तो सारी दुनिया गड़बड़ा गई होती। कहीं गड़बड़ा गई होती, मैं मानता कि टोडरमल स्मारक मेरा है तो मेरे मानने से टोडरमल स्मारक मेरा हो जाता, तो आपको कौन रोकता? आप भी तो मान सकते थे कि टोडरमल स्मारक मेरा है, और ऐसे अनंत जीव मानते तो क्या हो जाता? बोलो, तो किस किस का होता? समझना, वस्तु की व्यवस्था में यह सबसे बढ़िया बात है। कौन सी? कि हम कुछ भी माने, हमारे मानने से इस जगत में कुछ भी नहीं होता। अपन कहते हैं ना कि गंजे के नाखून होते तो बहुत बुरा हो जाता, समझे ना। ऐसी तेरी मान्यता से कुछ होने लगता तो आज तक न मालूम क्या हो जाता, समझ गए ना। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि हमारे मानने से कुछ होता नहीं। इससे जगत में तो किसी का कुछ बिगड़ा नहीं, हमारी मान्यता बिगड़ गई। देखो तुम दो दो को पांच मानो, क्यों? तो दो दो पांच हो जाएंगे, बता मुझे, नहीं होंगे? कितने काल तक मानो? रोजाना माला जपो, दो दो पांच, दो दो पांच, दो दो पांच, दो दो पांच, तो 1,00,000 दफे मंत्र जपो तो हो जाएंगे, नहीं होंगे? तो क्या होगा? तो तेरी मान्यता ही झूठी होगी। ऐसे तू अनंत काल से मानता रहा, स्त्री मेरी, पुत्र मेरे, मकान मेरे, शरीर मेरे, जायदाद मेरे, रुपया मेरे, पैसे मेरे, मैं इसे मार सकता हूं, मैं इसे बचा सकता हूं, मैंने इतनों को मारा, मैंने इतनों को बचाया, ये जमा खर्च करता रहा। लेकिन भाग्य से, वस्तु स्वरूप की वजह से एक भी परमाणु आज तक तेरा हुआ नहीं, तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा मानने से कुछ नहीं होता है डॉक्टर साहब? नहीं, बहुत होता है। तो क्या होता है? कि तेरे माथे पे अनंत कर्म आकर पड़े, तू अनंत दुखी हुआ, क्योंकि मान्यता तेरे में थी ना, तो दुख भी तेरे में ही पैदा हुआ। वस्तु के स्वरूप में तो कोई अंतर हुआ नहीं, जगत में तो कोई अंतर आया नहीं, तो तू ही दुख हुआ। तो जब हम ये कहते हैं कि तुम इसे छोड़ दो, तो वो तुम पर दया करके कहते हैं, उस पर दया करके नहीं कहते। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको कई दफे आई होगी, जब आप किसी को समझाते हैं कि भाई साहब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले गुस्से में वो बोलता है, आप मेरे से कहते हैं, उससे कुछ नहीं कहते? कहते कि नहीं कहते? बोलो। गलती उनकी भी तो हो सकती है। कहते कि 50 लोगों की बाप से बेटे की यही शिकायत है। हम अपने विद्यार्थियों को समझाएं कि देखो तुम उन छात्रावास के लड़कों से नहीं उलझना चाहिए, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। हमारी गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है, उनसे कुछ नहीं कहते? भाई हम तुम्हारे वार्डन हैं, उनके नहीं। हम तुम्हारे बाप हैं, उनके नहीं। अपने बेटे से बाप कहता है कि नहीं कहता? तो हमसे कहोगे, उनसे नहीं कहोगे? हाँ, क्यों? क्योंकि हम तुम्हारा हित चाहते हैं उनका। तुम ये समझते हो कि हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम उन्हें मारो मत, तो उनको बताने के लिए कह रहे हैं धोखे में मत रहना बेटा, तुम्हें बताने के लिए कह रहे हैं कि तुम उन्हें मारने जाओगे वो पिट के आओगे, फिर पुलिस में जाओगे, फिर जेल में जाओगे, तो ये सब झंझटों से तुम्हें बताने के लिए तुमसे कह रहे, उन्हें बताने के लिए नहीं कह रहे। तो ज्ञानी जीव कह रहे हैं कि हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम उसे अपना मत मानो, इसलिए नहीं कि तुम उसे छोड़ दो जिससे उसकी तकलीफ मिट जाए, उसे तो तुम पकड़ सकते ही नहीं, तुम अनंत दुख में नहीं पड़ो, इसलिए तुमसे ये कह रहे हैं। तो जीव मरे चाहे नहीं मरे, ऐसा लगा तो भी जिसके अद्वसान भाव है उन्हें बंद होगा, और जीव मरे चाहे ना मरे लेकिन जिसके अद्वसान भाव नहीं है उन्हें बंद नहीं होता है। तो बंद का संबंध अद्वसान भावों से है। एक बहुत बढ़िया कलश है 173 मां वो पढ़ते हैं जो बंद अधिकार का सार है। सर्वत्राद्यवसान मेद मखिलम त्याज्यम यदोक्तम जनई तन मन्ने व्यवहार एव निखिलो अन्यास्याज्यता सम्यक निश्चय मेकमेव तदमी निष्कंप माक्रम्य किम शुद्ध ज्ञान घने महेन मिन निजे भजनंति संतो धृतिम। बहुत मार्मिक छंद है, भगत भगवान से कह रहा है, अमृतचंद्राचार्य भगवान से कह रहे हैं कि भगवान तुमने कहा कि अद्यवसान भाव छोड़ो, ठीक है ना, यद उक्तम जिनई, यद उक्तम जिनई, जिनेन्द्र भगवान ने जो ये कहा, क्या कहा कि सर्वत्राद्यवसान मेव त्याज्यम, सभी अद्वसान भाव छोड़ो, सभी अद्वसान भाव छोड़ो माने क्या मोहनलाल जी, पर के लक्ष्य से होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम, दूसरों को मारने के भाव और दूसरों को बचाने के भाव, ये भी अद्वसान है, दूसरों को सुखी करने के भाव और दुखी करने के भाव, ये सब अद्वसान है। क्यों? क्योंकि तू सुखी दुखी कर नहीं सकता, मार बचा सकता नहीं है, और हवाई कल्पना है, मिथ्या मान्यता है। तो सर्वत्र अद्वसान भावों को भगवान आपने त्याग करने की बात कही है। मैं ये समझाऊं तो परीक्षा दे रहे कि आपने जो हमें अभी तक समझाया उससे मैं क्या समझा, और आगे एक कदम उठाते हैं कि इसका तात्पर्य मैं ये समझा कि अन्याश्रिता निखिलो व्यवहारा एव त्याजता इति मन्ने, कि तुम अन्य के आश्रय से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण व्यवहार को त्याग करने की बात कह रहे हो। क्या कह रहे? तुमने तो एक आगे अद्वसान भाव छोड़ो, और उसका अर्थ में ये समझा कि सारे जो पदार्थ हैं जिन्हें मैंने अपना मान रखा है, वो सारा जो व्यवहार है उसको त्याग करने की बात तुम मेरे से कह रहे हो, इसलिए मैं कहता हूं कि तुम अपने आत्मा में अपने उपयोग को क्यों नहीं बांध देते हो। देखो इसका हिंदी का अनुवाद कलश जो मैंने लिखा है वो आपको पढ़ के सुनाता हूं, कौन सा है 183 आपके पास सबके पास किताब है ना, नहीं है छोटी वाली किताब में है, अडिल्य छंद है। अडिल्य जानते हो क्या होता है? अडिल्य छंद जानते हो? जो पुरानी देव सास गुरु की पूजन है ना, उसका पहला ही छंद, प्रथम देव अरहंत सुसुप्त सिद्धांत जू, आगे तब ही अद्वसान त्यागने योग्य हैं, यह जो बात विशेष जने। कितना सरल अर्थ है, संस्कृत का श्लोक बहुत कठिन दिखता है, लेकिन इसमें अक्षर अक्षर अनुवाद है। एक कोमा फ्लस स्टॉप में भी अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें हिंदी करने से कुछ गड़बड़ हुई है। देखो पढ़ो, सभी ही अद्यवसान त्यागने योग्य हैं, इसका तो अर्थ करने की जरूरत नहीं। यह जो बात विशेष जिनेश्वर ने कही, भगवान ने जो ये बात कही है, इसका तो स्पष्ट अर्थ यह जानिए। क्या जाने स्पष्ट अर्थ? कि अन्याश्रित व्यवहार त्यागने योग्य है, अन्य के आश्रित से उत्पन्न होने वाला जितना भी व्यवहार है वो सब त्यागने योग्य है। ये अर्थ है स्पष्ट। और क्या बात है कि परम शुद्ध निश्चय नय का जो गेय है, परम शुद्ध निश्चय नय तो ज्ञान है ना, ज्ञान की पर्याय का नाम है ना, परम शुद्ध निश्चय नय किसका नाम है? ज्ञान की पर्याय का नाम। तो उसका गेय कौन है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो शुद्ध निजातम राम जो परम शुद्ध निश्चय नय का गेय है, वही एक ध्येय है ध्यान करने लायक है। ऐसी यदि ऐसी है बात, यदि बात ऐसी है कि सारा व्यवहार तो त्यागने योग है और निश्चय नय ग्रहण करने योग्य, देखो है ना, परम शुद्ध निश्चय नय ग्रहण करने योग्य है। यदि ऐसी है बात तो मेरी समझ में नहीं आता है कि मुनिजन लोग अपने भगवान आत्मा में निश्चल क्यों नहीं रहते हैं। शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चल रहें, क्यों निश्चल नहीं रहते हैं? ये मुनिराजों का उपयोग बाहर को क्यों भटकता है? ये तो उनके लिए कह रहे कि जिन मुनिराजों का उपदेश अपने शिष्यों को समझाने में भटकता था, ये आत्मा की बात। ये उन मुनिराजों को कह रहे हैं जिनका उपयोग आहार लेने के जाने में शुद्ध 32 अंतराय और 40 दोष टाल करके वहां उपयोग जाता था, उन मुनिराजों को कहते हैं कि जब ये बात नक्की है तो फिर तुम्हारा उपयोग वहां क्यों जाता है? तुम आत्मा में लीन क्यों नहीं रहते हो? क्यों? अमृतचंदाचार्य को उनका खेद है तो इनका क्या होगा? क्यों? ये जिनका जगत में सारे जगत में उपयोग डोलता है, अमृतचंदाचार्य कहते हैं कि उनके बारे में हमारे पास सोचने के लिए कोई समय ही नहीं, और हमें भी किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपना उपयोग उधर क्यों ले जाए। देखो यदि कितनी बढ़िया बात, यदि ऐसी है बात तो मुनिजन क्यों नहीं शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चल रहे? कहे जिनागम माहि शुद्धातम से भिन्न जो रागादिक परिणाम कर्म बंध के हेतु बे। इनकी बात है, कर्म बंध के हेतु कौन है? जो अपने शुद्धात्मा से भिन्न रागादिक परिणाम है वे आत्मा के बंध के हेतु है, पर पदार्थ बंधन के हेतु नहीं है। देखो रागादि ही एक बंध का जबरदस्त हेतु है, इसका कितना बढ़िया उपाय है समझने का। एक डाकू जो जेल में बंद था, 9 फुट चौड़ी सीमेंट कंक्रीट की 20 फुट ऊंची दीवार को तोड़कर फोड़कर निकल के भाग गया। वही डाकू अपने घर में आके रह रहा था, मकान छोटा सा था, घर में 5-7 मेंबर थे, तो फ्लाई की दीवारें खड़ी करके 2-3 कमरे बनाए थे, लंबा हॉल था ना ये कैसा, तो बीच में फ्लाई की दीवार खड़ी करके कमरे बनाए थे, एक में लड़का बहू सोता था, एक में वो खुद सोता था, क्या करे, बड़ा मकान नहीं हो तो करना पड़े ना ऐसा। अभी वो अंदर सोता था और बाहर से फ्लाई के किवाड़ और कोई सांकल लगा के चला गया, तो 8 घंटे तक बंद रहा लेकिन वो बाहर नहीं निकल सका। जो जेल की इतनी मोटी दीवार तोड़ के फान गया था, वो इतनी जितनी एक सूत बराबर फ्लाई को तोड़ के बाहर नहीं निकल सकता था। क्यों नहीं तोड़ पाया बताओ? क्योंकि इससे राग था और उससे द्वेष था, जिससे देश होता है, जिसे पराई समझते हैं, उसे इतनी मोटी दीवार भी तोड़ी जा सकती है, और जिससे राग हो, जिसे अपनी समझते हैं, क्यों उसे फुलाई की दीवार भी नहीं टूटती है। अपना माना तो हमने इस कर्म को अपना माना, तो कर्म की दीवारें कैसी टूटेंगी, कर्मों का नाश कैसे करेगा, बोल। बंधन कौन सा बड़ा है, दीवारों का बड़ा बंधन है या राग का बड़ा बंधन है, बोलो। राग का बंधन हो तो फ्लाई की दीवार में भी बंद रह सकता है। अरे तो फ्लाई की दीवार में बंद रहने की बात है, उससे भी निकल जाए और बाहर निकल जाए कि मैं तो जाता हूं, बहुत जरूरी काम है, तो भी बच्चा रोए जोर से तो लौट के आए भगवान। जेल की दीवार में से भगे और 25 पुलिस वाले पीछे दौड़े तो भी पकड़ नहीं पाए, और पकड़ लें तो छूट के भाग जाए। और वो ही आदमी, वो 2 बरस का बच्चा रोए तो लौट के आए, क्यों क्या बात है, मैं ये लाऊंगा, फुग्गा लाऊंगा, ये लाऊंगा, ये लाऊंगा, क्या लाऊंगा, आजकल क्या कहलाते हैं, चॉकलेट मोकलेट, क्या टॉफी लाऊंगा, ऐसा मना है। लेकिन जब तक वो हा ना कहते हुए, ये बड़े से बड़ा डाकू भाग नहीं सकता है, सब डाकू ही जैसे तो है, कोई कैसे हो कोई कैसे हो, ये मोही सब भाग सकते हैं क्या, बोलो नहीं भाग सकते हैं। और भाग जाए और 1000 मील तक चला जाए तो फिर तो आप पकड़ में नहीं आएगा, क्यों वो 1000 मील से दौड़ा चला आएगा। बहुत दिन हो गए बच्चे को देखे, बच्चे की अम्मा को देखे, क्यों तो राग का बंधन मजबूत बंधन है कि दीवारों का बंधन मजबूत बंधन है। इसलिए यहां पर इस बात को डंके की चोट उन्होंने कहा, देखो क्या कहा, कहे जनागम माही शुद्धातम से भिन्न जो देरागाधिक परिणाम कर्म बंध के हेतु हैं। यहां प्रश्न अब एक, उन रागाधिक भाव का यह आत्म कौन हेतु है अब कहें। अग्नि रूप ना हो सूर्य कांत मणि सूर्य बिन, राग रूप ना हो यह आत्म पर संग बिन। पर के संग का निषेध क्यों करते हो, जब पर कुछ गड़बड़ करता ही नहीं है कोमलचंद जी, तो पर का निषेध क्यों करते हो। तो कितना बढ़िया जवाब दिया, तो सूर्यकांत एक मणि होता है, नाम सुना होगा, शास्त्रों में पढ़ा होगा, दुनिया में देखा हो चाहे नहीं देखा हो, कि उस पर सूर्य की किरणें पड़ें तो वो आग हो जाता है, एकदम जलने लगता है। चंद्रकांत एक मणि होता है, उस पर चंद्रमा की किरणें पड़ें तो उसमें पानी झरने लगता है, लेकिन चंद्रमा की किरणें नहीं पड़े तो नहीं झरेगा, सूर्य की किरणें नहीं पड़े तो नहीं झरेगा। जैसे सूर्यकांत मणि में आग रूप होने की ताकत स्वयं है, लेकिन सूर्य की किरणें पड़ना चाहिए, ये नियम है। ऐसे ही आत्मा में राग रूप प्रणमन की शक्ति स्वयं की है, लेकिन उसका लक्ष्य पर पे होना चाहिए, ये शर्त है। कर संग बिन वो राग रूप प्रणमित नहीं हो सकता। राग होगा तो स्त्री से, पुत्र से, मकान से, जायदाद से, रुपए से, पैसे से, तो राग तो हो रहा हो किससे, किसी से नहीं, बस वैसे ही हो रहा, देव से, शास्त्र से, गुरु से। जो कितना बढ़िया लिखा ना, पसंद है आपके पास किताब है, नहीं हो तो सबको दे देना कल। अग्नि रूप ना हो सूर्य कांति मणि सूर्य बिन, राग रूप ना हो यह आत्म प्रसंग बिन। 175वां कलश है, ख्याल में आया ना, ऐसे वस्तु जवाब को जाने बिग सदीर, अपनापन नाराग में अतः अकारक जीव। ऐसे वस्तु स्वभाव को ना जाने अल्पाग्य, धरे एकता राग में नहीं अकारक आज्ञ। ये वस्तु का स्वरूप है। बंद अधिकार का निचोड़ क्या है, बंद अधिकार का सार क्या है, कि ये तेरे रागाधिक भाव हैं जो परसंग से उत्पन्न होते हैं, तेरे अंदर में तेरे बंध का कारण ये हैं, और संग बंध का कारण है।
Thank you.